मेरे सम्मान दूरदर्शन मोना परिवार, मेरे सचिव ब्रह्मचारी मंडल एवं मुख्य परिवार, भाग्यशाली है ये हमारी भारत की धरती जिस पर अध्यात्म क्रांति सृष्टा पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। वास्तव में तो गुरुदेव जी ने यह शांति की क्रांति की है और इस धरती के प्यासे जीवों को उन्होंने अध्यात्म का पाठ पढ़ाया। जैन धर्म के समस्त ही सिद्धांतों को पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी ज्ञान की भुजाओं के द्वारा मथा है। इतना मथा है कि मक्खन ऊपर आ गया है और वह मक्खन भी पूज्य गुरुदेव जी ने हमें हाथ में दे दिया है। सारी कसरत हमने पूज्य गुरुदेव से करवा ली है, सारी मेहनत उन्होंने करी और हाथ में रखा हुआ जो मक्खन है वह वास्तव में हमसे मिलना नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों उसको निगलने में कितनी कठिनाई हो रही है, क्योंकि गुरुदेव सिंह का स्टैंडर्ड है कि कहीं ना कहीं तेरे को इन सिद्धांतों में कोई मदद आ जाती है, मदद आ जाती है मतलब अड़चन आ जाती है, रुक जाता है। वह रुकावट हमारी कैसे निकले वह तभी निकल सकती है जब हम हमारे चिंतन को योग्य बनाएंगे। हमारा चिंतन वास्तव में सिद्धांतों की गहराई में नहीं पहुंच पाता है। जो सिद्धांत वास्तव में है तो बहुत सरल, जैसे ही संजय भैया ने बताया कि मोक्ष मार्ग और समय दर्शन बहुत सरल है, लेकिन सरल होने पर भी क्योंकि हम उसमें कहीं ना कहीं कोई मिलावट कर देते हैं इसलिए वह हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। जैसा है वैसा का होगा, आत्मा का स्वरूप जैसा है उसकी रहती ही रहती सिद्ध रहती है। सिद्ध रहती अर्थात श्रद्धा गुरु की ओर से बोलो तो वैसा का होगा अहम रूप से श्रद्धा सिद्धात्मा को स्वीकार करती है और ज्ञान भी उसी सिद्धात्मा में उपस्थित करता है और चारित्र भी उसी का अनुसरण करता हुआ उसी में लीनता करता हूँ। बस मोक्ष मार्ग इतना सही है, इतना है ज्ञानियों का जीवन सच में देखा जाए तो अंतरंग में उनको अपने सिद्धांत की अपार महिमा, अपार चिंतन और आनंदमय अनुभूति होती है। उनका जीवन बहुत प्रसन्नता में जीता है, खुशियां ही खुशियां रहती है उनके जीवन में। और वो क्यों रहती है, हम सोचते हैं ज्ञान जन इससे खुश क्यों रहते हैं। शास्त्रकार का नारी भी पहले तो व्यक्ति मन काटते न रखती घोर वेदना में ही वह पूर्व योजना को याद करके और अपने ज्ञान के द्वारा सिद्धात्मा का चिंतन करता हुआ अनुभूति देखता है। और वह ऐसा आया है कि घोर स्तर की समय उसके ऊपर चल रहा है, इस तरीके जैसे इस तरीके हजारों टुकड़े लाखों टुकड़े पड़े उस समय में वह सन्यासी लेने का है। तो हमारा जीवन और हमारी कल्याण तो उस नरक के नाशी से बहुत ऊपर है, बहुत ऊंची सोच से पड़े हैं हम, जहाँ पर सब कुछ सुविधाएं हैं और गुरुदेव जैसे गुरु हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे गुरु की वाणी वास्तव में मोह का बहुत काम करने वाली वाणी चूरा कर दे, मोह का चूरा कर दे और चूरा करके अचानक से निकाल दे, ऐसे गुरु की वाणी। लेकिन फिर भी हमें गुरु को ये कहा ना दे कि गुरु गोविंद जो खड़े काफी लागू पाए बलिहारी गुरु आप सुने गोविंद जीरो बचा, ऐसा गुरु आप गुरु ने ही मुझे देव का भगवान का अनंत परमात्मा का स्वरूप बताया है। आज की लहर से भी हम देखे हम तो दिगंबर ही थे मूल से, लेकिन वास्तव में भगवान को किस रूप में पूजा करता था। बाबू जी ने लिखा है दो जन कि तुमको पहचाना तुम झट देता हुए चले हो और दाखिल भूत स्वयं ही हर गए चले हो, कभी कभी तो तुमको जय को तुम्हें आता अरे वो जो छोटा है ताही जलता माता इसलिए आवश्यकता भगवान तुम्हारी जो तुम्हारे तुमने रखते लाज हमारी और नहीं तो हमको तुमसे मतलब भी क्या दुनिया में गई इसीलिए भगवान बन गया। ऐसा मतलब जान लो हम माना करते थे, लेकिन आज देखिए गुरुदेव ने हमारे इस दिगंबर संप्रदाय में ही हमारी मान्यताओं को मिथ्या मान्यताओं को आमूलचूल परिवर्तन हो गया, सब कुछ व्यवहार क्रियाओं से रूप बदल गए, ढंग बदल गए और जो निश्चय का जो मक्खन गुरुदेव जी ने हमें दिया वह तो सच में कहना चाहिए जैसे कहा ना कि खुशहाली खुशहाली जीवन में होती है तो हमको जो नहीं होती है वैसे खुशहाली हमारी जिंदगी हर समय ना कुछ तनाव में हर समय हमारी गर्व भरी जिंदगी चलती है और लगता है निराशा ही निराशा सामने दिखती है, किसी को क्या तकलीफ है किसी को क्या तकलीफ है ये सब क्यों हो रहा है। तो दोनों में यदि हम सामने रखें आमने सामने रखें तो क्या अंतर है, अंतर सिर्फ इतना है कि उनकी जो परिणति है उनकी जो ज्ञान की धारा है उनका जो परिणाम का स्वरूप है वो बदल गया है, डायरेक्शन चेंज हो गई है, दिशा बदल गई है और हमारी दिशा पूरी तरह से अपोजिट दिशा है। बाबू जी ने जब प्रथम बार जिसे दर्शन किए तो पूछा हमारे घर में बच्चे लोग हैं तो सबने पूछा कि बाबू जी आपको गुरुदेव जी से प्रथम बार मिलने पर और उनके दर्शन करने पर कैसा लगा, तो बाबू जी बोले मेरे सारे उल्टे घड़े सीधे हो गए ऐसा, और मेरी सारी मिथ्या मान्यताएं जुड़ गई ऐसा बोला। और साथ में अभी अंतिम समय में तो अभी भी भैया वगैरह की पधारे थे, तब बोले कि देखो मैं तुमको एक बात कहता हूँ, देखो मैं तुमको एक बात कहता हूँ, बोले सब लोग पूरा ग्रुप क्या बाबू जी क्या, देखो गुरुदेव महावैज्ञानिक हुए हैं, महावैज्ञानिक हुए हैं, बार बार बोले जा रहे कि क्या उन्होंने ये बताया कि देखो जो फ्लाइट होता है वो पायलट नहीं चलाता है और पायलट की गलती से फ्लाइट प्रगति नहीं होता है ऐसा, ऐसे अणु अणु की स्वतंत्रता का शंखनाश करने वाले कुछ गुरुदेव जी बोले इस युग में एक आविष होता है साइंस के आविष्कर्ता है जिन्होंने परमाणु का आविष्कार किया और ये बताया कि हर परमाणु दिगंबर है, जैन धर्म में दिगंबर नहीं है लेकिन हर परमाणु दिगंबर है क्योंकि उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, वो क्यों आवरण ओढ़ेगा क्योंकि सृष्टि ने उसको भी दिगंबर, कुदरत ने इसको भी दिगंबर बनाया है, इसलिए हमारा दर्शन कुदरती दर्शन है और कुदरती दर्शन होने के कारण इस दर्शन का नाम हमने डाल दिया दिगंबर दर्शन ऐसा। तो ऐसा गुरुदेव जी की अपार महिमा जिनके शिष्य में थी, और राहुल जी ने कहा देखो कितना संतुलित था गुरुदेव जी का जीवन कि ज्ञानियों का ज्ञानियों को जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है, समय दर्शन हो जाता है तो उनको अध्यात्म का आहार पानी शुरू हो जाता है ऐसा, इसलिए उनका सारा जीवन संतुलित हो जाता है, मर्यादित हो जाता है, अनुशासित हो जाता है, संयमित हो जाता है। हम कुछ भी देखें क्या क्या है, हम देखते हैं, हम हमारी नजरों से देखते हैं, अज्ञानी का पैरामीटर क्या है देखने का, ज्ञानियों को देखते हैं तो लगता है जैसे राज ही राज दिखता है, सब कुछ करते हैं ये करते हैं, अरे सौ तांडव नृत्य करता है, ये सब राज ही देता है क्योंकि हमारा शक्ति दूसरा है ऐसा। लेकिन हमको गुरुदेव को पढ़ने के लिए, उनको निरखने के लिए, उनकी उस चिंतन तक, उनकी अनुभूति तक पहुँचने के लिए उन्हें देवता ही करना पड़ेगा, तभी हम ज्ञानियों का हृदय समूह करते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न और बाबू जी के लिए भी, मैंने भी बाबू जी को कहा इस समय बाबू जी से बात कर रहे थे, मतलब बाबू जी आपकी आपकी आपके जीवन में सब कुछ संतुलित है तो आपकी ये कुंडली और कौन से कर्म ने बनाई है, मैंने पूछा बाबू जी से कि कौन से, तो बाबू जी बोले थोड़ी देर उसे मैंने कहा कि देखो आपका आहार है, आपके वस्त्र है, परिधान सब, मतलब आश्चर्य की बात है कि मैंने मेरे जीवन में उनसे बात 10-15 देश से ज्यादा कभी नहीं हुई इसमें 50 साल की जिंदगी में, और सब कुछ उनका नका फुला था एकदम जैसे तराजू की तरह, खाना पीना दो मग्गे से स्नान कर लेते थे ऐसा, दो मग्गा कभी आधी बाल्टी से उनको मैंने स्नान करते नहीं देखा, वैसे तो वो 4:30-5 बजे उठ के शरीर का स्तन करते थे और सब कुछ एकदम ताजगी उनको होती थी, फिर ध्यान और गुरुदेव के जो प्रवचन थे उनमें से उनको कोई खास इम्पोर्टेंट बात देखनी होती थी उनके चिंतन की तो वो अध्ययन करते थे और अंडरलाइन सारे शास्त्र बन रखे हैं पांचों परमागम और गुरुदेव के तब, तो ऐसा उनका जीवन था। तो उसमें मैंने बोला आपके सब आपका आहार पानी निद्रा स्नान आपका वजन, वजन भी उतना ही रहा पूरे जीवन में 39 kg, तो उतना मैंने कहा परिधान आपका बोलना आपका आवागमन प्रवास साधन प्रसाधन आपकी अर्थव्यवस्था सब सब कुछ मैंने कहा आपका संतुलित कैसे हुए एक सा पूरे जीवन कैसा एक से रहा, तो बाबू जी एकदम हंसते हैं और हंसकर बच्चे उनसे मस्ती कर रहे थे तो बाबू जी बोले कि बेटा ये सब तो पुण्य पाप के हेड ऑफिस से ऑर्डर होता है तो ये सब
हो जाता है। मेरे को तो गुरुदेव ने ऐसा शुद्ध आहार दिया है कि वो आहार जो जब मैं करता हूँ तो मुझे ये आहार का ये बाहरी चीज का कुछ पता ही नहीं रहता। ऐसा ऐसी उनकी व्यवहारिक जीवन की मतलब सदा बाहर बाबू जी की सदा बाहर जिंदगी का यह राज था। ऐसा तो सच में अनुकरण और उनके आदर्श थे क्योंकि गुरुदेव आज हम जिसको आदर्श नहीं बना पाते हैं एक एलिमेंट होना चाहिए जीवन में तो उससे क्या होता है लक्ष्य का निर्धार होता है कोई टारगेट होता है तो उससे भी उससे सिमिलर उससे कदम कदम पर हम बढ़ सकते हैं। गुरुदेव के पास क्या नहीं था ज्ञान नहीं था कि ध्यान नहीं था कि श्रद्धा नहीं थी कि चारित्र नहीं था योग नहीं था कि संयम नहीं था क्या नहीं था सब कुछ था। सुबह भाई ने लिया ना 320 गाथा में ध्यान आज कई एक बार विचार आया मेरे को ऐसा आया अरे देखो गुरुदेव को इतने साल हो गए 70-80 साल हो गए सारा विश्व भी मिलकर उनको नहीं समेट पा रहा उन्होंने जो दिया है नहीं समझ पा रहा इतना दिया है गुरुदेव ने चाहे लिखा नहीं लेकिन इतना बोले हैं और एक पंक्ति पर एक ग्रंथ बन जाए क्योंकि हम देखते हैं कि एक विद्वान वही गाथा लेता है तो उस गाथा का एनालिसिस किस किस ढंग से हो सकता है पर्याय की बात आती है द्रव्य की बात आती है तो कितना एनालिसिस कितना दिया है गुरुदेव ने यानी उनकी चिंतन की और उनकी ज्ञान की गहराई कैसी थी जिन्होंने अंदर अपने ज्ञान सिंधु में से मुठ्ठियां भर भर के निकाली और हमको बाटी ढोली फेंकी हमारे ऊपर लेकिन फिर भी दे असर कुछ नहीं हुआ। तो गुरुदेव का बता रहे जी ने कि ऐसा विचार आया ध्यान की पढ़ना की सहज फोटो देखते हैं गुरुदेव के फोटोग्राफ तो कैसा सहज ध्यान होता है। आज फिर भी हमारे ग्रुप में से हम ये देखते हैं कि क्यों लोग ध्यान की तरफ चले जाते हैं जहाँ अलग ध्यान की क्लासेज लग रही है जहाँ ध्यान तो कुछ नहीं है लेकिन अकेला ध्यान है लेकिन गुरुदेव श्री ने और आज भाई ने भी लिया था कि 320 गाथा में क्या बताया कैसा करता है ध्याता पुरुष ऐसा क्या करता है कैसा ध्यान करता है ये सकल निरावरण ऐसा बताया परिणामी आत्मा ऐसा ध्यान करता है कि वह अपरिणामी है वो है ध्यान। ध्यान कोई किया नहीं जाता न ध्यान का कोई समय होता है न ध्यान का कोई आसन होता है और ध्यान कोई सिखाया नहीं जाता लेकिन जब ध्येय का निश्चय हो जाता है तो परिणति ढुलक ढुलक कर हमारा ज्ञान ढुलक ढुलक कर स्लो बन जाता है और सहज ही उदय खाता है तो वो जो ज्ञान है वो आत्मा में गुरु रूप से परिणित हो जाता है तो उसी अवस्था को ध्यान नाम दिया जाता है वही अवस्था ध्यान नाम पा जाती है। उसने तो दिया है साई ज्ञान का भी बताया यानी केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान तो ये मानता ही है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ सकल निरावरण हूँ अपरिणामी हूँ लेकिन यहाँ तो ये बात कही कि एक देश ज्ञान भावकृत ज्ञान एक देश ज्ञान भावकृत ज्ञान शुद्ध उपयोग निर्विकल्प ज्ञान निर्विकल्प अनुभूति वही ये मानता है कि मैं सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में ऐसी वस्तु है ऐसा मानता है तो वो ध्येय वहाँ पर फिर बाबू जी ने किसी ने कहा कि बाबू जी इसी गाथा के आधार से चर्चा चलती थी तो बोला कि बाबू जी फिर ऐसा ध्यान करते हैं तो बाबू जी बना रहे ये तो पर्याय दृष्टि हो गई करना कराना लगना देखना सुनना यह शरीर संबंधी चलता है इस पर एकाग्र करो इस पर ये तो सब बोले पर्याय दृष्टि है देह का ध्यान है वो तो अमूर्तित है वह वस्तु तो अमूर्तित है और उस रूप परिणमन होने वाला जो निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण वाला परम समाधि बोलो ऐसा जो ज्ञान है वो ध्यान रूप से परिणमित हो जाता है उसी ध्यान रूप से परिणमित हो जाता है मतलब जैसा भाई साहब हेम सिंह जी सामने भी कर लिया था ना 194 गाथा में ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे ही ग्रुप में से जो लोग छट छट कर दूसरी डायरेक्शन में दूसरी दिशाओं में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है गुरुदेव संपूर्ण नहीं है, गुरुदेव पूरे नहीं है, गुरुदेव अधूरे हैं। कोई गुरु अधूरा होता है। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का एक अंग निकाल दो, मनुष्य कहलाए हो ही नहीं, वो अंग ही नहीं हो। पूरे होते हैं ना, मनुष्य के अंग पूरे होते हैं। और हम यहाँ पर, यहाँ तो हम कहना चाहिए भोजन करे, मैं मेरे घर पर भोजन करूँ और आपके घर पर जाकर पानी पीऊँ, ये कोई मेरी जिंदगी का राज है? ऐसी जिंदगी होती है नहीं, सब कुछ होता है अपने घर में, सब कुछ होता है। तो ऐसे ही जैसे शरीर के सारे अंग पूर्ण होते हैं, वैसे ही बताया हमारे जो गुरुदेव थे वो पूरे थे। और 320वीं गाथा का उन्होंने जो मर्म खोला है, वो वास्तव में किसी की बच्ची बात नहीं है। उसके लिए कितना सशक्त ज्ञान चाहिए, कितना शक्तिशाली ज्ञान चाहिए, और वो ही महाअद्भुत ज्ञान शक्तिशाली ज्ञान है। वो ऐसा अनुभव करता है भावकृत ज्ञान, वो भावकृत ज्ञान रूप आनंदित हो जाता है, वही ज्ञान की परिया है। तो 194 गाथा में भी कल घर सामने दिया था कि शुद्धात्मा संचेतन लक्षण ज्ञान, वो शुद्धात्मा का जो संचेतन होता है, संचेतन होता है मतलब अनुभूति, वह संचेतन में चिंतन नहीं लेना, उसकी जो अनुभूति है वही ध्यान नाम प्राप्त करती है। इसलिए मेरा भी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने बहुत जगह देखा है अभी सब अलग अलग बहुत भ्रमित हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, लेकिन हमारे गुरु ने सब कुछ दिया है। इस दुकान से आप सब कुछ खरीद सकते हो, ड्राई या मिठाइयाँ, ये ऐसी शॉप है, ऐसा शोरूम है, ये मॉल है, मॉल सब कुछ दिया है। इसलिए कुछ ऐसे जैसे आई थी तो 320 गाथा का तो कुछ आठ साल निकाला जा रहा था, कोई भाई घर पर आए थे तो सब अपना अपना निकालते, लेकिन हमें जब बाबूजी ने भी बोला कि बाबूजी ने बोला कि देखो देखो गुरुदेव का जो चिंतन है, तो उनके चिंतन से अपना चिंतन मिलाओ, अपने चिंतन से आचार्यों का गुरुदेव का चिंतन मत मिलाओ, क्योंकि अभी हमारे चिंतन का पैरा निकल गया है, किससे मांगते हैं हमको कुछ पता नहीं है। और इतना बाबूजी के पास आकर सब लोग प्रश्न करते थे, ऐसा बहुत सारे मंगलार्थी आए इस बार, तो सब तो पहला प्रश्न तो यही होता है जैसा अभी संजीव भैया ने बोला कि संत दर्शन कैसे हो बाबूजी, ऐसा तो बाबूजी तो सीधा बोले कि सूखे संख से संत दर्शन का नारा लगाने वालों को संत दर्शन नहीं होता। पुरुषार्थ की जल धारा बहानी पड़ेगी, जैसे देश के लिए खून की नदियां बहाई जाती है, वैसे संत दर्शन के लिए पूरा सीधा होना पड़ता है। कुछ यहाँ का, कुछ वहाँ का, कुछ ध्यान की तरफ, ऐसा होता है कि हम निश्चय निश्चय गुरुदेव से ले लें। और व्यवहार दूसरी जगह जाके ले लो तो लोग कहते हैं कि व्यवहार की कमी थी, होता है ऐसा कभी? दो जगह मिलता है, जहाँ वो होता है वहीं पर वो होता है। इसलिए बताया है कि पूरा गुरुदेव को पूरा पढ़े, पूरा पढ़े, पूरा पढ़े मतलब गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र को, उनका निश्चय व्यवहार पूरा पहलू, दूसरी बात उनकी, उनका चिंतन, उनका अनुभव, और उन्होंने जो मतलब कहना चाहिए मनुष्य समाज के सामने एक पूरी ताकत के साथ, इतने सालों तक बाबूजी ने कहा ना 43 साल तक रेगिस्तान में ये बदली बरत गई, सूखा था ना, बिल्कुल सूखा, ऐसा तो ऐसा ऐसा बोले जल धारा यानी पुरुषार्थ की धारा बहानी पड़ेगी। तो कैसे पता करें, फिर प्रश्न आया कि कैसे पता करें कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ चल रहा है, ऐसा बाबूजी से पूछा तो बाबूजी ने बोला कि तुम्हारे परिणाम का क्या एवरेज चल रहा है, तुम्हारी गाड़ी का क्या एवरेज चल रहा है, मुझे क्या पता क्या एवरेज दे रही गाड़ी, ये तो तुमको ही पता करना पड़ेगा। और तुम तो दूसरों के सम्यक दर्शन को टटोलने में रहते हो। बस बहुत आंसर थे तो पूछता था, तो कभी आज तक भी उस तरह का जवाब नहीं मिला होगा। पर वो कहते थे कि तुमको क्या मिल जाएगा उससे, लेकिन लेकिन स्वयं स्वयं उनके जीवन को आदर्श बनाकर और उस तरफ यदि हम उनको सम्यक दृष्टि मानते हैं तो जो चीज हमें चाहिए हम चाहते हैं सुख चाहिए, कितने आनंदित है ये हमारे अनंत परमात्मा और ये हमारे गुरुदेव कितने प्रसन्न, ऐसा तो ऐसी खुशियाली हमको भी चाहिए, ऐसी हरियाली हमको भी चाहिए, ऐसी रिमझिम बारिश चाहिए अंदर। तो रिमझिम बारिश चाहिए तो फिर रात की रात क्यों करते हो, करना है ये तो रात की करता है, ये तो तपन है, रात को क्या है बंजर भूमि है, बिल्कुल बंजर है। ऐसा एक प्रश्न और आया था अभी अभी कि श्रद्धा है, श्रद्धा गुण तो श्रद्धा गुण की जो फील्ड है उसकी कार्य प्रणाली उसका कार्य क्षेत्र वो तो कितना छोटा सा है, वो हमारे पकड़ में क्यों नहीं आता। सच है ये प्रश्न वास्तव में बहुत मार्मिक है और एक खुला प्रश्न है कि उसका हमको पता नहीं, मतलब श्रद्धा श्रद्धा क्या है श्रद्धा। तो और सम्यक दर्शन तो हमको समझ में आता है, लेकिन श्रद्धा गुण का काम वही सम्यक दर्शन श्रद्धा, लेकिन उसका कार्य है सिर्फ मैं की स्थापना करना अहम, तो ये इसका कैसे पता करें, क्योंकि हम जब भी हम हमारे ज्ञान में सोचते हैं तो हमारे हाथ में ज्ञान ही ज्ञान हाथ में आता है, श्रद्धा हाथ में नहीं आती। तो फिर बाबू जी ने बोला कि एक बार ऐसा करो कि सारा ज्ञान का जितना विषय है उसको एक बार चुप कर दो, ज्ञान की फाइल को क्लोज कर दो एक बार, उसको पेटी में बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, श्रद्धा का स्वरूप समझना है ना, तो उसके लिए उसको क्लोज कर दो, फिर लगेगा हाँ नहीं मेरा भी कोई अस्तित्व हो ऐसा। फिर मैं करने से श्रद्धा का काम होता है ना, मैं पना प्रतीति रूप कहते अनुभव के समय यानी प्रतीति के समय वो पत्थर जाती है, कहती है एक्सक्यूज मी मेरे लिए जगह खाली करो द्रव्य में, द्रव्य पूरी द्रव्य पूरी चादर हटा देता है, तब श्रद्धा दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है और उसके गले में वरमाला डालती है। क्यों, ज्ञान में सब कुछ निर्णय हो गया, ऐसा ज्ञान में सब कुछ निर्णय हो जाने पर भी क्यों श्रद्धा में पलटा नहीं होता, पलटन नहीं होती, अलटन पलटन नहीं होती। सब कहते हैं निर्णय सांसू से अरे पाकू से, पाकू तो हो सके थे पर सांसू नहीं। सच्चाई वो होती है जब सत्य करो सत्य करो, जो सत्ता गुरु छठी गाथा ने कहा सत्य प्रकाशमान है, जाए एक भाव है सत्ता है, वो सत्ता ज्ञान में जैसी भी जाती जाती निर्णय के कारण में जैसे पहले उस सत्ता का अस्तित्व स्वीकार किया था वैसा का वैसा ज्ञान अनुभूति के कारण में निर्विकल्प संवेदन होकर निर्विकल्प लक्षण बताया ना भाई जब ध्यान वो बताया तो वैसा का वैसा निर्विकल्प होकर और कुछ अनुभव रूप परिणमित हो जाता है। तो उसी समय अभी तक श्रद्धा को क्या हो रहा था, ये प्रश्न जो है पंचाक्षी का या पुरुषा सिद्धि उपाय में भी आया है कि ज्ञान का बिल्कुल प्रैक्टिकल है अपने लिए, जो जिस मार्ग पर जिस डायरेक्शन पर अपन चल रहे हैं जहाँ पर अपन खड़े हैं आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर अपन खड़े हो ना, तो हम यहाँ आगे क्या करना है, बिल्कुल अब ऐसा लगता है नहीं नहीं अब हम हमारा समय लंबा नहीं करेंगे क्योंकि काल तो खड़ा है दरवाजे से झपटने के लिए, इसलिए इसलिए शॉर्ट बताओ शॉर्ट कट क्या है। तो उसने बताया है कि ज्ञान ज्ञान का विषय क्षेत्र तो सारा जगत होता है, ऐसा मैनेजमेंट पर्सन है ज्ञान को सब कुछ जानता है। ऐसे जैसे अपने प्रोजेक्ट दे दिया शादी में, किसी को शादी का प्रोजेक्ट दे दिया किसी व्यक्ति को, कोई भी होते हैं कॉन्ट्रेक्टर तो उसको दे दिया, तो उसे सारा काम पूरा तैयारी करके रख दी शादी की थी, चलो बाराती कहाँ ठहरेंगे और कौन सी होटल बुक करना है, कौन सा थिएटर बुक करना है, सब कुछ तैयार, मंडप सजा दिया, सब कुछ कर दिया। सभी लोग आने लगे, जो इनवाइट लोग थे सब लोग आने लगे। सबने कहा कि कहाँ है दूल्हा दुल्हन, तो वो कहते हैं नहीं दूल्हा दुल्हन तो नहीं है, बस यही शादी है। तो क्या कहेंगे उसको, मेला नहीं कहेंगे, ये तो मेला लग रहा है, कहाँ शादी है। शादी तो उसे कहते हैं जब दूल्हा दुल्हन आमने सामने होते हैं और जिस क्षण वो उसके गले में वरमाला डालती, चाहे ये कुछ भी हो, ऐसा चाहे मंडप नहीं हो, चाहे होटल की बुकिंग नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन एक कितना सा काम ये देखो, ज्ञान भी कितना संक्षेप हो जाता है। ऐसा आता है ना विचार दशा चलती है सारी इतनी, लेकिन विचार दशा तो सारी तरंगित है, तरंगित दशा है, वो तो उमड़ उमड़ कर आते हैं, घूम घूम कर विचार आते हैं आत्मानुभूति के पहले। लेकिन सब कुछ होने पर भी कहते हैं फिर भी जो दूर होता जा रहा है आत्मा, ऐसा तो बता रहे हैं कि सब कुछ तैयारी ज्ञान कर लेता है, लेकिन जो श्रद्धा है अभी उसको पसंद नहीं आ रहा। इसलिए जो श्रद्धा गुण है आत्मा का, वह संवेदनशील रूप अवलंबन नहीं करता है, प्रतीति रूप अहम रूप अवलंबन नहीं करता है। सब कुछ ज्ञान का तो बहुत विस्तार है, लेकिन उस विस्तार से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ग्यारह अंधकार ये भी कहा जाता है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बोला है कि ऐसा अब बता रहे हैं कि श्रद्धा को उस योग्य, क्या बता रहे हैं, श्रद्धा को उस योग्य ज्ञान का परिणमन चाहिए, ऐसा तब श्रद्धा उस द्रव्य के गले में वरमाला समर्पित करती है। ऐसा उस योग्य बनना पड़ेगा, जैसे अपन कोई वस्तु बनाते हैं घर में तो हम देखते हैं कोई भी टेम्परेचर गैस का या माइक्रोवेव जो भी जिसमें भी बनाते हैं तो वैसा टेम्परेचर टेस्ट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर बताया कि वैसा टेम्परेचर सेट होगा श्रद्धा और ज्ञान का, दोनों का, तब एक दोनों दूसरे से सहमत होंगे और फिर दोनों एक साथ उस द्रव्य के घर में, द्रव्य के महल में, कहना चाहिए द्रव्य के उस बंगले में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते हैं उसके साथ में सारे गुण, आत्मा के अनंत ही गुण उस रूप वर्णन करते हैं। ये ऐसा एक कहना चाहिए समय दर्शन का जो समय होता है, आत्मानुभूति का समय होता है, वह बाबू जी कहते थे एक मंगल महोत्सव होता है भीतर, ऐसा उसमें आत्मा की प्रतिष्ठा होती है, श्रद्धा की पर्याय में, श्रद्धा की वेदी में उस शुद्ध ज्ञायक तत्व की, परमात्मा तत्व की, निष्क्रिय तत्व की प्रतिष्ठा होती है। वह निष्क्रिय है, लेकिन जो श्रद्धा है, श्रद्धा का देखते हैं ना अपन की श्रद्धा पूरी सीधा होती है, पूरे रूप से श्रद्धा में ऐसा नहीं होता कि श्रद्धा का कुछ अंश दूसरे के लिए समर्पित हो और श्रद्धा का कुछ अंश अपने गुरु द्रव्य के लिए समर्पित हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा आया है कि श्रद्धा की मांग को सारा विश्व मिलकर भी पूरा नहीं कर सकता। श्रद्धा जो मांगती है, भूखी है, श्रद्धा जिसकी भूखी है द्रव्य की, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको तो अपना द्रव्य चाहिए, तो उसको सारा विश्व मिलकर पूरा नहीं कर सकता। यदि एकमात्र द्रव्य के पास जाती है तो द्रव्य उसकी झोली में सारे रत्न डाल देता है, भर देता है झोली को, ऐसा। और एक गुरुदेव अभी बाबू जी के अंतिम समय में 3-4 दिन पहले एक चर्चा और चली, कहीं मैंने पढ़ा था, तो मैंने बाबू जी को बताया कि बाबू जी देखो गुरुदेव जी के प्रवचन में कितनी अच्छी बात आई, यही श्रद्धा की चर्चा चलती थी। देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ भी दूं चाहे आपको, कि देखिए 2 दिन पहले निकले उनके मुखार बिंदु से अनमोल मोती, यदि सम्यक दर्शन यह कहो कि मैं सम्यक दर्शन हूँ तो वो मिथ्या दर्शन है। क्यों क्या? हाँ, क्योंकि उसको अभी पर्याय का मोह नहीं छूटा है ऐसा, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि में इस अखंड पूर्ण सत्ता का ही वर्चस्व और अहम होता है। वर्चस्व मतलब, वर्चस्व मतलब संपूर्ण सब कुछ पूरा ऊपर वर्चस्व होता है, सर्वोपरि होता है। तो श्रद्धा के भार को पर्याय नहीं संभाल सकती, द्रव्य ही संभाल सकता है ऐसा। क्योंकि श्रद्धा के भार को पर्याय को तो हमेशा देते ही आ रहे हैं, अनादि काल से पर्याय को तो ममत्व देते ही आ रहे हैं, क्योंकि वो फिसल जाता है। पर्याय को दिया हुआ जो ममत्व है वो फिसल जाता है, वो मूर्छा जाता है, छूटने की तरह झिकझिक लाइट की तरह वो चला जाता है, इसलिए वो उसके भार को नहीं संभाल सकता परिणाम, क्योंकि जो परिणाम है वो खुद ही मर जाए तो क्या भार को संभालेगा। जैसे दिया था ना प्रकाश भाई ने उदाहरण दिया था कि बाबू जी कहते थे कि एक बच्चा जन्मा किसी माता के गर्भ से, एक बच्चा जन्मा तो उस बच्चे को ज्योतिष को दिखाया, ज्योतिष ने बोला इसका तो बहुत राजयोग है, ये तो राजा बनने वाला है ऐसा, और बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, मासूम है, कोमल है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी आयु 3 दिन की है, 3 दिन की है, तो बताओ वो ऐसा बच्चा क्या कमा के खिलाएगा, माता पिता के लिए क्या सहारा है, उसके सहारे से रह सकेंगे माता पिता नहीं। ऐसे यहाँ पर बताया, ऐसे ही आज भाई साहब ने 4 भावों की भी चर्चा ली थी ना, सारे साई ऑप्शमित सारे भाव, सारे भाव जी सच्चा है, क्षण भंगुर है, और परम कारणांत भाव ध्रुव भाव है, ध्रुव भाव। तो बाबू जी के खटी राशा पे चर्चा हो रही थी उस समय, तो बोले वो ध्रुव भाव है। तो मैंने पूछा बाबू जी वो कैसे अनुभूति में आता है, तो बोले वो ध्रुव रूप की अनुभूति में आता है, ऐसे चिन्ह मात्र है, मतलब उसके लिए यदि अपन कुछ बोलो तो वो क्षणभंगुर हो जाता है। जैसे बोला ना बाबू जी मौनी है, मौनी है, वो बोलता नहीं है, अनबोला है और अनहोना है ऐसा। तो होना होना तो सब पर्याय में चलता है, भाई साहब कहते थे होना प्लस वो माइनस हो जाता है ऐसा। तो इसलिए जैसे कितना सुंदर, वो नहीं संभाल सकती, द्रव्य भी संभाल सकता है। मतलब कहना यह है कि परिणाम की संभाल में परिणाम खो जाता है, परिणाम चला जाता है, परिणाम हाथ में नहीं आता, लेकिन द्रव्य के समान में हर परिणाम खोला हुआ आता, हर परिणाम संभला हुआ निकलता है। क्रमबद्ध भी मत बोलो, वो अपनी जो योग्यता है वो हो रहा है उस समय, वो द्रव्य की परिधि में हो रहा है, हर परिणाम संभला हुआ आता है। लेकिन अज्ञानी परिणाम को संभालता है, परिणाम से प्यार करता है, परिणाम से मोह करता है, तो उसके हाथ में द्रव्य भी उसके हाथ में से निकल जाता है ऐसा। तो इसलिए बोला है देखो उसकी उम्र एक समय की है, फिर वह श्रद्धा के ममत्व को कैसे टिका पाएगा। ऐसे जैसे कहते हैं ना कांच की चूड़ी की तरह वो स्वयं ही टूट जाने वाली है, पर्याय खनक जाती है, जैसे खनकती चूड़ियाँ खनकती पायल ऐसे, तो वो स्वयं ही खनक जाएगी, टूट जाएगी, तो वो तुम्हारे सुहाग को कैसे टिकाएगी। लेकिन वो पर्याय यदि द्रव्य पर समर्पित हो जाती है तो उसका जो सुहाग है वो अमर हो जाता है, उसका स्वाद कभी टूटता नहीं, फूटता नहीं, स्वाद कभी खंडित नहीं होता, वो द्रव्य में क्योंकि मरता ही नहीं है, ऐसे अमर तत्व पर समर्पण करती है। तो बाबू जी कहते थे अमरता की अमराइयों में जानी चोरिया करते हैं, खेल करते हैं ऐसा, अंदर अंदर क्या चलता है उनके, उनका उनका प्ले ग्राउंड है। इस तरह श्रद्धा दी जाने अस्तित्व, हाँ तो वो बात चल रही थी कि मैंने बाबू जी को बोला कि बाबू जी गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है कि वो तो आती है कि जो पूर्णानंदना नाथ जनाधिकारी पर्याय पर नहीं, पर निर्विकारी शुद्ध पर्याय मोक्षनी पर्याय पर जमा नहीं, एवो द्रव्य शुद्ध आखो द्रव्य फिर दृष्टि नो विशेष। ये तो बहुत ज्यादा बाबू जी के नोट करे हैं गुरुदेव के, बहुत छठी गाथा में लिए दिए बाबू जी ने सीडी में तो ऐसा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि गुरुदेव ने कहा कि श्रद्धा बीजाणु अस्तित्व स्वीकारती नहीं। तो बाबू जी बोले कभी तबियत तो ऐसी चल रही थी बहुत नाजुक, तो बोले अरे ये तो बहुत वजनी बात है, देखो इससे तो बहुत पुष्टि मिलती है और इसको लिख लेना, मेरी जो नोट बुक है उनमें लिख देना कहाँ मिला ये, बहुत वजनी बात है। तो ऐसे वह बोले कि बहुत मार्मिक बिंदु है और इस तरह से ऐसी मतलब मनोहर चर्चाएं, सुंदर सुंदर चर्चा बाबू जी के मुख से आई और इसको मुख से बात हो, समय हो गया। अच्छा तो बाबू जी का कहना चाहिए जो वास्तव में अपन बात कर रहे थे कि श्रद्धा की पिंड कितनी छोटी होती है, तो उसके बारे में बाबू जी एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि ऐसे सोचो कि जैसे जैसे जगत में अनेक देवी देवता है ना, तो लोग क्या करते हैं जो अन्य मती है वैष्णव आदि हिंदू लोग, तो उनको पता है क्या, उन्होंने देखा है क्या देवता को, कोई देवता को देखा है जिसको भी वो मानते हैं हनुमान के रूप में राम के जिसके भी, तो उनको नहीं देखा है लेकिन फिर भी वो उनको श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, उनका अस्तित्व तो नहीं है, नहीं है ये, वो तो अलग अलग तरह से कल्पना करते हैं कर्तावाद ईश्वर जो भी व्याप्त है कण कण में ऐसे अलग अलग, तो उनको नहीं देखा लेकिन फिर भी वो श्रद्धा से स्वीकार करते है ना, तो ऐसे श्रद्धा उनका कार्य क्षेत्र ऐसा होता है। और इसको देते थे कि जैसे अपनी पीढ़ियां हैं पूर्व की पीढ़ियां हमारी पीछे की पीढ़ियां निकल चुकी और आज हम है हमने उनको नहीं देखा है लेकिन अपन श्रद्धा से पूर्व की जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को याद कर करके हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे ऐसे थे हमारे पिता पिता के पिता ऐसे थे ऐसा, तो ये ज्ञान का काम नहीं है, ये श्रद्धा का काम है, जल्दी से स्वीकार कर लेता है। तो श्रद्धा की फील्ड इतनी ही होती है, मैं जितनी होती है देखो है तो मैं जितनी, लेकिन काम तो इसका ज्ञान से भी बहुत बड़ा, ये नहीं होता ज्ञान कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान खाली खेल मखोल और जानने में ही अपना सारा समय बिता देगा, लेकिन जब श्रद्धा प्रणमन होता है श्रद्धा का तो फिर ज्ञान को भी सम्यक संज्ञा दे दी जाती है। श्रद्धा के प्रणमन के बिना सही प्रणमन के बिना ज्ञान कितना भी जान ले कितना भी ज्ञान कहना चाहिए हल्ला मचा ले कितना भी आकार कर ले ज्ञान कितना भी शोर मचा ले लेकिन इसके बिना उसको सम्यक संज्ञान नहीं मिलती है। इसलिए अभिप्राय इसलिए जो चीज अभिप्राय यानी कहते हैं ना कि मोक्ष का मोह भी मोह है, मिथ्या दर्शन है, वो भी तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, ऐसा यानी निर्मल पर्याय साई पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय जिसकी तो बहुत शानदार है जब भगवान के दर्शन करते हैं आपके जैसा केवल ज्ञान मुझे चाहिए ऐसा, तो कहते हैं कि है नहीं वर्तमान में निर्मल पर्याय अज्ञानी जीव को विद्यमान नहीं है, लेकिन ये क्या करता है निर्मल पर्याय की श्रद्धा कैसे करता है अज्ञानी जीव ऐसे करता है कि मैं अपने इस विकार को आश्रय बंध को दूर करके संवर निद्रा को प्रकट करके और फिर एक दिन मोक्ष को प्रकट करूंगा, ऐसे कल्पना ही कल्पना में निर्मल पर्याय की विकारी पर्याय की श्रद्धा किया करता है। तो बहुत ही कहते हैं वो भी मोह है मोक्ष का मोह भी तुझे एक कदम के आगे नहीं बढ़ने देगा ऐसा, बल्कि पीछे धकेल देता है ऐसा, और जो अपरिणामी शुद्ध निष्क्रिय ज्ञान तत्व है उसके निकल जाता है तो मोक्ष मोड़ा मोड़ा आता है। अपन उल्टे करते हैं पीछे से शुरुआत करते हैं आगे से जहाँ से जैसे भाई ने कहा था ना कि बाबू जी ने एक बार कोलकाता गए थे तो वहाँ बोला था कि मैं वह लोखंडी चट्टान हूँ जिसके पैर चुन चुन कर केवल ज्ञान की अनंत पर्याय निकल जाती है तो भी मेरा एक प्रदेश भी कम नहीं होता। ऐसी फौलादी चट्टान में हूँ, ऐसे उस फौलादी चट्टान की श्रद्धा, उस फौलादी चट्टान का अनुभव, उसका स्वानुभव, उसका एकाग्रता, ज्ञान में एकाग्रता होती है ना। श्रद्धा के निर्विकल्प से, श्रद्धा के लिए बहुत सारे पॉइंट होते हैं समझने के, एकांतिक होती है, निर्विकल्प होती है, उसमें पर नहीं होता, उसमें मुख्य गुण नहीं होता, वो सारा हम ज्ञान का इसमें लगाते जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, वो ज्ञान का विषय है सारा। तो वो सब हम देखते हैं तो बताना यह है कि ज्ञान भी उस रूप का अनुमन करता है निर्विकल्प। देखो निर्विकल्प तत्व की अनुभूति के लिए, उस शुद्ध चैतन्य के अनुभव के लिए ज्ञान को भी वैसा ही मन के आना पड़ेगा, तब तो उसको वो जो शुद्ध द्रव्य है वो उसको अपने आंगन में आने देगा। और यदि वो भर के कुछ ले जाएगा तो वो द्रव्य कहता है पहले बाहर खाली करके आ। ये सब जो तेरे को चल रहे है ना, विचार विचार विचार, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, कभी इधर से देखता हूँ तो आत्मा ऐसा लगता है, इधर से देखता हूँ ऐसे घूम घूम कर विचार आते हैं, जैसे नहीं चाहिए। करण लब्धि में अत्यंत सूक्ष्म विचार रह जाता है, अत्यंत सूक्ष्म, वो भी एकमात्र अकेले द्रव्य संबंधी, पर्याय संबंधी नहीं, द्रव्य, सूक्ष्म द्रव्य, मतलब सूक्ष्म विचार, अकेले द्रव्य संबंधी बस। तो वो फिर वहाँ से करण लब्धि के उत्तर क्षण में, उत्तर से करण लब्धि में अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि करण लब्धि का समय तो विचार का ही समय है, वहाँ तो सूक्ष्म विचार है, अभी निर्विकल्प नहीं हुआ ज्ञान, लेकिन उत्तर क्षण में एक छलांग भरता है तो वह ज्ञान अनुभूति रूप अनुमित हो जाता है, यानी ज्ञान स्वयं संवेदन एकाग्रता लक्षण समाधि भी बोला है उसको। जैसे ना आचार्य ने तो जगह जगह समाधि शब्द बहुत यूज किया है, समाधि, तो वो निर्विकल्प समाधि कहो, ध्यान कहो, या शुद्धात्म संचेतन कहो, स्वसंवेदन कहो, उस रूप में ज्ञान परिणत हो जाता है। और ऐसा अनुभूति का समय वो महा पहला क्षण, कभी पहले अनंत काल जो बीत गया ऐसा दुख का त्रास भोगते भोगते, अब ये समय उसका अनुभूति का समय आता है, इसलिए ज्ञानी आनंदित रहते हैं वो, ऐसा, क्योंकि वो सारा भर भर के पर्याय को भर भर के दे देता है, वो इतना अभेद हो जाता है, ऐसी अभेदता आया है। अभेदता के लिए बताया है कि जैसे अनुभूति यह कहे कि मैं आत्मा का अनुभव करती हूँ, मैं ध्रुव द्रव्य हूँ, तो बोला कि नहीं, ये तो भेद खड़ा हो गया, तुमको भेद खड़ा हो गया, यानी कि कहना चाहिए दूरी हो गई, दो हो गए, एक अनुभव करने वाली पर्याय और एक अनुभव में आने वाला द्रव्य, ये तो दो हो गए, तो क्या करना पड़ेगा कि तुझे भूल मिलकर, कैसा कि तुझे बोलना पड़ेगा मैं तो एकमात्र मात्र ज्ञान ध्रुव रखती हूँ, ऐसे वो पर्याय ध्रुव बन गई, यानी उसने अपना अस्तित्व की अस्वीकार कर दिया, अस्तित्व खो दिया, एकदम आदृश हो गई, ऐसा बाबू जी की चट्टान को आदृश हो जाती है। तो उसके लिए बोलते हैं कि अगर जैसे कोई मौन ही, किसी व्यक्ति ने मौन लिया है, ठीक है, मौन है, तो उससे पूछा जाए कि आज आपके क्या है, जैसे भाषण की दीजिए, तो मैंने, इन्होंने आज मौन ले लिया, मुझे नहीं बोलना है, तो मैंने इनसे पूछा कि आज आपको क्या है, तो ये कहे आज मेरे मौन है, तो मौन टूट गया। ऐसे ही अनुभूति ये कहे कि मैं अनुभूति हूँ या मैं अनुभव कर रही हूँ, तो वो आनंद खंडित हो गया, बिखर गया, आनंद बिखर गया। और यदि मौन होकर उसकी अनुभूति करती है तो वो आनंद का फंक्शन बराबर चालू रहता है, ऐसा। तो बाबूजी ने एक लिया, उसके लिए अपन पढ़ते थे हिंदी साहित्य में भी कि उस समय की अवस्था कैसी होती है कि सारी रीति नारी है कि नारी रीति सारी है, सारी रीति नारी है कि नारी रीति सारी है, ये ऐसा होता है। ऐसे ध्वन खड़ा हो गया, क्या है ये ध्रुव है या पर्याय है, पर्याय है या ध्रुव है, ऐसे दोनों इसमें अभेद हो जाते हैं। यानी पर्याय को पर्याय दिखाई नहीं देती, बिल्कुल उसने अपनी दुनिया ध्रुव के लिए खाली कर दी है, सबको समर्पित कर दिया है। ऐसा बाबू जी के जीवन की यह साधना एक चहल पहल थी उनके जीवन में। अंदर की कैसी चहल पहल होगी जब ये बाहर में चहल पहल देकर चले गए। क्या था वो समय, अभी उनसे मिले लेख तो एक उस डायरी में लिखा मिला। ऐसे 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 अलग अलग थे ये चहल पहल कैसे लिख लेते थे। पूछा बाबू जी आपके साहित्य रचना, भाई ने तो कहा था कि साहित्य रचना से बोलो, लेकिन वो विषय रह गया। लेकिन फिर भी उनकी साहित्य रचना जो हुई तो सच में कहा जाए तो बाबू जी कहीं भी होते थे, बोलो सड़क पर होते थे, व्यवसाय में होते थे, मंदिर में होते थे, या घर में बाथरूम में होते थे, भोजन के समय होते थे, हर समय उनको कोई न कोई धारा चलती थी और वो लिखिया लास्ट टाइम तक भी बच्चों को कुछ लिखाते रहते थे। और आपके साथ से जो 4 साल काम हुआ तो आपको पता ही होगा कि बाबू जी की मन पसंद काम कैसा होता था। भाई साहब तो कहो कि बहुत थक गए होंगे, 4 साल की समय सार का प्रकाशन हुआ ना तो सब लगे हुए थे, तो जहाँ तक उनको पसंद नहीं आती कोई थी इसलिए उनका प्रकाशन नहीं हो पाया साहित्य का। अभी 2 दिन पहले भी मैं इनसे बोले ये तेरे को ये चैतन्य वाटिका की जो पुस्तक है बाबू जी की काव्य रचना है उसमें कुछ ठीक कराना है। ठीक कराना है मतलब कविताएं आगे पीछे करके अगर नया निकालो संस्करण तो वैसे मेरे से पहले ठीक करवाना फिर निकालना। तो इसी उसने मतलब उनको निकालने का जरा भी मन नहीं होता था और कहते थे हमेशा ये जो चहल पहल है ना इसका गुजराती ट्रांसलेशन का प्रस्ताव पहले भी आया था, लेकिन पता है बाबू जी क्या बोले थे कि गुरुदेव जी का गुजराती साहित्य बहुत है उसको पढ़ो, वो तो बस उसी का निचोड़ है इसमें, इसलिए पहले नहीं हो पाया इसका। तो इस तरह से बाबू जी हमेशा मतलब अपने साहित्य प्रकाशन के प्रति उदास रहते थे और रखा है थोड़ा साहित्य प्रकाश में आ जाए तो। और उनका जो काव्य साहित्य है एक ये बताना चाह रही थी मैं आपको, समय हो गया सॉरी लेकिन 2 मिनट में, कि एक शिविर गुरुदेव के टाइम बाबू जी ने कोटा में आयोजित किया था और एक दूसरा शिविर लालचंद भाई की पूज्य लालचंद भाई की उपस्थिति में कोटा में 8 दिन का रखा था। तो उस समय कोटा में एक इंडिया लेवल का जैन कवि सम्मेलन भी बाबू जी ने रखा था, लालचंद भाई भी उसमें थे, बहुत मस्ती लूटी थी उन्होंने भी। तो उस समय उसके पहले 5-6 महीने पहले साल भर पहले से बाबू जी के पास पूरे इंडिया के जो उच्च स्तरीय जैन कवि थे, जैन कवि सिर्फ जैन कवि, तो उनकी 500 कवियों की फाइल बाबू जी के पास आई और इसके फाइल में बहुत बहुत सारी कविताएं जितना भी होता है उनका काव्य रचना है सारी थी। तो उसमें से बाबू जी ने इतनी मेहनत हुई थी, उस समय बाबू जी को माइग्रेन की 8-8 गोली खाते थे एक दिन में, 8-8 गोली खा जाते थे ऐसे समय में उन्होंने, वो तो बहुत ही लंबा चला माइग्रेन का, तो वैसे नहीं प्रवचन करते थे तब। तो उस समय में बाबू जी ने उसमें से मतलब सारा संपादन का काम, जैसे अभी भाई साहब ने इसका संपादन किया तो वो सब संपादन उस समय बाबू जी ने किया, एक भाई और साथ में थे लेकिन सारा बाबू जी ने किया। तो बाबू जी ने 500 कवियों में से सिर्फ 80 कवि सेलेक्ट किए थे, ऐसे उच्च स्तरीय जिनकी कविताएं थी, क्योंकि बाबू जी को हल्का साहित्य पसंद नहीं था, लगता सबको बहुत है कि बाबू जी का समझ में नहीं आता उनके शब्द वो, लेकिन वो तो हमारी कमजोरी कि हम साहित्य नहीं पढ़े हैं, हिंदी साहित्य का परिचय हमको नहीं है, क्योंकि बाबू जी बाबू जी का मानना क्या था, बाबू जी का बहुत अच्छा था ये विचार कि अगर कुछ निचले स्तर की जो कविताएं हैं, भानुमती ने कुनबा जोड़ा वो कहते थे, तो अगर वैसी कविता इधर का ये एक यदि ऐसी कविता ऐसा साहित्य यदि प्रकाशित किया जाता है तो आगे आने वाले जो कवि हैं, जो बहुत बड़े बड़े कवि होते हैं, तो वो ये कहेंगे कि अरे भारत में ऐसे कवि होते थे क्या ऐसा, इसलिए तो आज अपने जो आचार्य है कुंद कुंद आचार्य, तो उनका साहित्य पढ़ो और आज के विद्वानों का साहित्य पढ़ो तो बहुत अंतर लगता है। भाव भाषा भंगिमा सब उनका रस परिपाक बनता है, आचार्यों का पढ़ते से रस अलग बनता है। अभी भाई साहब कल पढ़ रहे थे स्व संवेदी, कैसा लगता है वो शब्द ही ऐसे होते हैं, हम हमारे शब्दों में ढाल देते हैं तो वो उतना ग्रहण नहीं होता है, और वो चीज ऐसी होती है जो अनुभूति में आती है, वो उनके शब्दों के अनुसार बिल्कुल वैसा परिणाम होता है अंदर। तो उस समय बाबू जी ने ये उसी समय ये कोटा फेडरेशन की ओर से ये एक कविता, इसमें 80 कवि बाबू जी ने सेलेक्ट किए थे, तो ये एक प्रकाशन वहां से हुआ था, काफी समय हो गया, लेकिन फिर आपको एक दिखाना था तो वो मैंने कहा कि बाबू जी का जो साहित्य का उदान है वो बहुत बड़ा है और बहुत उपकार है उनका, तो ये सारी बाबू जी की जो साहित्य साधना अध्यात्म साधना सच बोलो अंत में समाधि में बदल। मेरे द्वारा मेरे से बहुत ऊंचे चिंतन वाले विद्वान बैठे हैं, मेरे द्वारा थोड़ा भी कुछ मेरे इस बोलने में यदि कुछ कमी रही हो, कुछ गलती रही हो तो वो मुझे अवश्य सुधारे और क्षमा करें।
Thank you.